हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो आप एक शब्द पे ध्यान देंगे जरा, और वो शब्द है ट्रांसलेशन में मुख्यतया, यानी मुख्यतया का अर्थ है वेदों में रजगुण तमगुण सतोगुण यानी कि भौतिक विषयों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकम विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात आये वे कल्पते। जो व्यक्ति श्रुति और स्मृति यानी वेदों के जो दर्शन है, जिस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, उनके नियमों का पालन ना करके व्यक्ति भक्ति करता है तो समाज में केवल उत्पात उत्पन्न करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की भक्ति में वेदों का डायरेक्शन नहीं है, या फिर वेद जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए नहीं बताते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां भगवान बता रहे हैं कि जो वेदों का वो भाग जैसे कर्मकांड और ज्ञान कांड, इससे तुम अलग हटो और शुद्ध भक्ति के निर्गुण भक्ति में लगने का प्रयास करो। और इससे क्या होगा, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। और द्वैत, द्वैत का अर्थ होता है लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, इनसे भी मुक्त हो जाओगे। और योग क्षेम, योग क्षेम का अर्थ होता है कि जो मेरे पास है उसकी रक्षा करना, योग और उसको जोड़ना, जो मेरे पास नहीं है उसको जोड़ना, क्षमा कीजिएगा, योग का अर्थ है जो हमारे पास नहीं है उसको जोड़ने का प्रयास करना, और क्षेम मतलब जो हमारे पास है उसको बचाने का प्रयास करना। और सत्वस्थ का अर्थ होता है नित्य, सत्वस्थ का अर्थ होता है हमेशा शुद्ध भक्तों के संग में रह करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं नित्य शुद्ध सत्व में स्थित होना, अगर आप उसके अनुवाद को देखेंगे, क्योंकि अगर केवल सत्वगुण में रहने की बात होती तो फिर सही नहीं होता, क्योंकि भगवान से पहले बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठो, सत्वगुण रजगुण तमगुण से भी ऊपर उठो, और एक्सक्लूसिवली यानी कि एकनिष्ठ भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। सत्वगुण रजगुण और तमोगुण ये तीनों व्यक्ति को बांधने वाले होते हैं। तमोगुण व्यक्ति को एकदम अज्ञान से बांधता है, रजगुण व्यक्ति को फलों से बांधता है, मतलब वो जगत में कुछ पाना चाहते हैं, और सत्वगुण में से ज्ञान तो उत्पादित होता है लेकिन जो सुख मिलता है सत्वगुण का, उससे भी व्यक्ति जगत से बंध जाता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे समान जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। मतलब वेदों में बताया है जो उसका त्रैगुण्य विषय है उसमें बताया गया है कि आप ये नियम पालन करें और इसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन इस नियम का पालन करने से भले ही वो नियम भौतिक इच्छा के कारण पालन किया जा रहा है और वो भौतिक रिजल्ट देता है, लेकिन साथ साथ वो हृदय की शुद्धि भी करता है। धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन हृदय की शुद्धि होती है। जब चेतना की शुद्धि होती तो क्रमशः वो आध्यात्मिक धरातल यानी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ उन्मुख होने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है, यानी कि योग्य बन जाता है। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। यानी कि भोगों की जिज्ञासा लेकर के वेदों के पास जाने की बजाय ब्रह्म जिज्ञासा कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व किस लिए है, हमारा उद्देश्य जीवन का किस लिए है, इस जिज्ञासा को लेकर हम वेदों की शरण लें या वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस प्रकार की इच्छा भगवान की है, अर्जुन को उस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। क्यों कठिन संघर्ष होता है, क्योंकि हमारा शरीर चिरस्थाई नहीं है, या कह सकते शाश्वत नहीं है, और हम स्वयं शाश्वत हैं। तो इस कारण से शाश्वत शरीर शाश्वत जीव अशाश्वत शरीर में फंसे रहने के कारण संघर्ष करता रहता है। हम चाहते जरूर हैं कि हमको शाश्वतता प्राप्त हो, या हमको हमारे शरीर को आनंदमयता प्राप्त हो, ज्ञानमयता प्राप्त हो, लेकिन ये ना मिल पाने के कारण संघर्ष चलता रहता है और हम दुख अनुभव करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। यानी भौतिक जगत भगवान ने इसलिए भी बनाया है ताकि हम लोग भोग कर सकें, और इसलिए भी बनाया है ताकि हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकें, और उसका निर्देश हमको वेदों के द्वारा मिलता है। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि वेदों में ये भी हमें मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे हम नियमित रूप से भोग कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कैसे हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और अंततो गत्वा इस जगत इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद्गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। कई कई जन्मों तक वेदों के द्वारा जो वर्णित क्रियाएं हैं जिसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना भरी रहती है या इंद्रिय तृप्ति के मौके मिलते हैं, व्यक्ति स्वर जाता है, अप्सराओं का संग करता है, सोमरस इत्यादि पीता है, करते 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 कोटि कोटि जन्मों के बाद जीवात्मा को यह अनुभव होने लगता है कि मैं इस कार्य करके भी सुखी नहीं हूं। तब वो इस प्रकार की जिज्ञासा करने के योग्य बनता है कि मेरा अस्तित्व केवल भोग करने के लिए नहीं है, अपितु जीवन का उद्देश्य कुछ और भी होना चाहिए। अब ये चीज कोटि कोटि जन्मों के बाद में मिल सकती है, और ये हमें बड़ी आसानी से मिल सकती है भगवान के भक्तों के मुख से सुन करके। तो अगर भगवान के भक्तों के मुख से हम सुनते हैं तो ये भावना बहुत जल्दी जागृत होने लगती है कि मेरे जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। और उसमें भी अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, नाम जप करें, भागवत पढ़ें, भगवद्गीता पढ़ें, तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है। तो जो काम कोटि कोटि जन्मों के शुद्धिकरण से होना था वो एक ही जन्म के प्रयास से हो सकता है भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन उसे भक्तों के मार्गदर्शन में हमें सीखना चाहिए। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। तो ये जो गर्मी सर्दी सुख दुख की द्वैतता है, ये देखिए भौतिक जीवन में भी आती है, लेकिन जिस प्रकार से हम अपना बिजनेस बंद नहीं करते, अपनी पढ़ाई बंद नहीं करते इन द्वैतताओं के बीच में, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति को भी बंद नहीं करना चाहिए। और जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं इन द्वैतताओं को, ड्वैलिटीज को सहन करते हुए, तो हमारा भक्ति का आवेश बढ़ता जाता है और फिर हम अपने आप ही हानि और लाभ की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ये वस्तुएं मुझे नहीं मिली हैं, मुझे इसको प्राप्त करना है, ये वस्तुएं मेरे पास हैं, इनकी मुझे रक्षा करनी है, इस प्रकार की चिंता से अपने आप मुक्त हो जाता है और केवल वही सोचता है कि कैसे मैं भगवान के भक्तों का संग करके शुद्ध भक्ति में लग सकूं। ये आत्मवान होने का लक्षण है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि जिस परिस्थिति में कृष्ण मेरे को रखेंगे मैं उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करूंगा। तो ये स्थिति अपने आप आ जाती है व्यक्ति की जब भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति करता रहता है, और इसी को उपदेश भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। यावनर्थ उत्पाने सर्वतः टेक्स्ट 46 यावनर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर किसी के पास एक तालाब है और अगर किसी के पास उस कोई व्यक्ति समुद्र के पास में है या बहुत विशाल जलाशय के पास में है तो जितना जल उसको एक तालाब से मिल सकता है, एक कूप से मिल सकता है, उतना ही उस प्रकार का जल उसको एक विशाल जलाशय से भी मिल सकता है। जलाशय के पास रहने वाला व्यक्ति एक छोटे से कुएं के पास नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से वेदों का उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति करना, और अगर व्यक्ति समझ लेता है तो वेदों का उद्देश्य वो समझ लेता है। भगवद गीता में लिखा है वेदेश सर्वेर अहम एव विद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदों का उद्देश्य कृष्ण को जानना, और भगवान ये भी बोलते हैं कि भक्ति अमाम भी जानाती, भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं और किसी तरीके से नहीं। तो जो व्यक्ति समझ गया तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है भगवद्गीता को सुन करके, तो वेदों के उद्देश्य को जानता है, उसके लिए वेदों को स्पेशली कर्मकांडी सेक्शंस को दोबारा पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा कि कुछ समाजी लोग करते हैं, कहते हैं कि भगवद्गीता मत पढ़िए और आप वेदों को पढ़िए, वेदों में ज्ञान मिलेगा। ये मूर्खता है। वेदों का ज्ञान का सार है भगवद्गीता में भगवान उसको समझा रहे हैं, और जो खुद वेदों के संकलन करता है वो स्वयं समझा रहे हैं, तो उसमें हमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों के तात्पर्य को देखिएगा। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यानी कि जितने भी यज्ञ हैं, नियम कानून बनाए गए हैं वेदों में करने के लिए, उसका उद्देश्य यही कि व्यक्ति कम से कम आत्म साक्षात्कार की दहलीज तक, बाउंड्री पर आ जाए और अपने वो जिज्ञासा करे कि वो है कौन। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद्गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। इसको मैंने भी कोट किया था, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यम, वेदों का उद्देश्य कृष्ण को जानना। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। ये बड़ा क्लियर है। आत्म साक्षात्कार अर्थ ये नहीं है कि मैं आत्मा को एक लाइट के रूप में देखूं। जब हम सूर्य के सामने होते हैं तो स्वयं को भी देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं और पूरी जगत को भी देखते हैं। उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार अर्थ का अर्थ है, सच्चा अर्थ यह है कि भगवत साक्षात्कार, हम भगवान का साक्षात्कार करें, अपना साक्षात्कार अपने आप होगा और जो हमारा संबंध है भगवान से वो भी हमको समझ में आ जाएगा, और वो होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद्गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। बहुत सुंदर है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की तरफ हमारे भाव जागृत हो जाए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, और कृष्ण की सेवा में लग जाए व्यक्ति, तो वो समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति सारे वेदों को पार कर गया, वेद पार ग, सारे ब्राह्मणों से भी वो श्रेष्ठ है व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार भी है। अहो बत स्व पचतो गरीयान यज्जीव आग्रवर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मान चिर नाम गृणन्ति येते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है वेदों का सार। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, हर प्रकार का यज्ञ, हर प्रकार के वेद अध्ययन कर चुका है। एक बार एक व्यक्ति से मैं अपने घर के पास में मिला और मैंने पूछा, क्या आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते हैं, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उपनिषद के सारे मंत्र पता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन सारे उपनिषदों का जो सार है हरे कृष्ण मंत्र, वो उनको नहीं पता था। तो इसी प्रकार से लोग ज्ञान का स्थूल पीटते रहते हैं। स्थूल मतलब स्थूल तुषावघाती नाम। इस बात को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति छोड़ देता है और ज्ञान इसका शुष्क ज्ञान में लग जाता है, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान में लग जाता है ब्रह्म जी, तो इसमें ऐसा व्यक्ति कैसा है जैसे चावल का स्थूल, यानी चावल के छिलका है उसको पीटे और वो सोचे कि चावल मिल जाएगा। जो असली चावल क्या है, या कह सकते हैं असली ज्ञान का उद्देश्य है कृष्ण को जानना और अपना संबंध कृष्ण से जानना, और ये ना जान, और ये होता है भक्ति के द्वारा। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो फिर वेदों का सारा उद्देश्य पढ़ने का वो निष्फल हो जाता है, कोई फायदा नहीं है एक्चुअली पढ़ने का। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है वो भगवान को प्रसन्न करता है, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति में लगा हुआ है, इस कारण से वेदों का सारा ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो शुद्धिकरण उसको भगवान के नाम जप से प्राप्त होगा, वो संपूर्ण वैदिक अध्ययन करने से भी प्राप्त नहीं होगा। अतः हमको श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति करने में हमारी जो हम भक्ति करने की प्रेरणा मिले और भक्ति करने का जो विश्वास है वो बढ़े, ना कि कर्मकांडी भागों को पढ़ना चाहिए जिससे हमारा जो हृदय है या हमारी श्रद्धा है वो भोगों की तरफ उन्मुख हो। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे, क्योंकि शाश्वत समय में स्वर्ग लोक एक झटके में खत्म हो जाता है, एक क्षण में खत्म हो जा रहा है। शाश्वत जीवन के अगर से कंपेयर किया जाए तो ब्रह्मा जी का दिन जो है बहुत कोटि कोटि अरबों सालों का होता है, वो भी एक अग्नि के एक चिंगारी की तरह है, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो बताइए फिर स्वर्ग जाने की कामना कितनी मूर्खता होगी। इस युग में समान व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। मान लीजिए कोई पढ़ना भी चाहे, संस्कृत नहीं आती समय और उसके बाद समय नहीं है, समझावट नहीं है और उसके बाद उम्र बहुत कम है, लेकिन सभी का लाभ मिल जाता है अगर हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय यानी बहुत लंबी उम्र, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। तो अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु अपने समय में के सबसे बड़े पंडित थे, अपने समय के क्या वो सबसे बड़े पंडित हैं, भगवान हैं स्वयं, लेकिन कोई भी पंडित उनको हरा नहीं सका था। और बल्कि एक दिग्गज पंडित को, बहुत बड़ा वो पंडित था केशव काश्मीरी, उन्होंने झटके में ही हरा दिया, सिर्फ खेल खेल में हरा दिया था। फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं वेदांत अध्ययन क्या करूंगा, मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि तुम भगवान का नाम जप करो, यही सर्व शास्त्रों का सार है। और इससे हमको भी शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत बड़ा पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा प्राप्त करके ही भगवान को समझा जा सकता है। और इसीलिए शास्त्रों को पढ़ करके हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम शास्त्र को पढ़ें नहीं और सुने नहीं, क्योंकि पढ़ के सुनकर हमको प्रेरणा मिलेगी भगवान का नाम जप करने के लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ के, भगवद्गीता भागवतम पढ़ के अगर कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करे, नाम के प्रति उसकी निष्ठा नहीं हो, तो फिर कोई शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं होता है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावन मत हो गए। जपित जपित होई मुई होई लो पागल, भगवान का नाम जप करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि भावन मत हो जाता है व्यक्ति, जैसे शराब पीकर व्यक्ति पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, बाहर की खबर नहीं रहती, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, ऐसे ही भगवान का नाम जप करते करते एक दिन भक्त की ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाह्य जगत की उसको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। और महाप्रभु ने इसे अपने आदर्श से दिखाया। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, और मैं भी हूँ और हम सब लोग हैं, और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। यानी मूर्ख है मतलब पहले ही वेदांत को पढ़ने का अधिकार है नहीं, और उसके साथ साथ शिक्षा भी नहीं है, संस्कृत नहीं आती है, पढ़ने की रुचि नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं हैं। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद देता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है, यानी भगवान नाम के जप के द्वारा हृदय शुद्ध कर लें, और हमें अगर भगवान के नाम में आनंद आ रहा है जप करने में, तो हमें समझ में आना चाहिए कि सारे वेद वेदांतों को पढ़ने का लाभ हमको मिल गया है। तो इसलिए व्यक्ति को उसमें लगना चाहिए और अपनी मति को कर्मकांड ये ज्ञान कांड के विषयों में नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।